दोस्तों एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम अमेरिका में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में चर्चा करेंगे।
दोस्तों ईरानी कैलेंडर में 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक को अमरीकी मानवाधिकार सप्ताह का नाम दिया गया है। इसका कारण यह है कि अमरीकी अपराधों विशेष रूप से ईरानी जनता पर अमरीकी अत्याचारों को याद किया जाए। मानवाधिकार एक पुराना शब्द है जो 20वीं शताब्दी से दुनिया में ध्यान का केंद्र बना है। हालांकि पुराने जमाने से ही न्याय, समानता, आज़ादी, सुरक्षा और अधिकारों पर बात होती रही है, लेकिन व्यवस्थित रूप से मानवाधिकारों पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ध्यान दिया गया। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार घोषणा पत्र को इस संबंध में पहला समग्र दस्तावेज माना जा सकता है।
इस घोषणा पत्र के मुताबिक मानवाधिकार एक ऐसा शब्द है कि जिसके आधार पर मानव अधिकार को औपचारिकता प्रदान की गई है। इसका अर्थ है कि सरकार को लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकार का सम्मान करना होगा और उनकी बुनियादी आज़ादी के अधिकारों के उल्लंघन से बचना होगा। वास्तव में इंसानियत के लिहाज से समस्त इंसानों के अधिकार एक समान हैं। धर्म, जाति, राजनीति, राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में लोग सरकार के नौकर नहीं हैं, बल्कि वे मुल्क के नागरिक हैं। अगर कोई सरकार लोगों से उनके ये अधिकार छीनती है तो उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। जैसा कि मानवाधिकार घोषणा पत्र के पहले अनुच्छेद में उल्लेख है, सभी इंसान इस दुनिया में आज़ाद हैं और उनके अधिकार समान हैं।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के संकलन में अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके बावजूद ये देश मानवाधिकारों के प्रति दोहरी नीति अपनाते रहे हैं। पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका की नज़र में सभी इंसानों के अधिकार समान नहीं हैं। अमरीकी सरकार खुद अपने देश में और विदेश नीति में इसी नीति का पालन करती रही है। उदाहरण स्वरूप अमेरिका में अश्वेतों को श्वेतों के मुकाबले में दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। अमेरिकी पुलिस अश्वेतों पर अत्याचार करती है और सरकार उनके अधिकारों का हनन करती है।
विदेश नीति में अन्य देशों, विशेष रूप से इस्लामी देशों और पश्चिमी संस्कृति और मूल्यों के बीच अंतर को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जैसे कि कुछ ऐसे मामले जिन्हें पश्चिमी समाज में मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है, वो इस्लामी समाज में संस्कृति, मूल्यों और धार्मिक विश्वास का हिस्सा हैं। उदाहरण के तौर पर मौत की सज़ा, इस्लामी कानून के तहत कुछ अपराधों में दोषी को मौत की सज़ा दी जाती है, लेकिन कई पश्चिमी देशों में इसे समाप्त कर दिया गया है। पश्चिम इस्लामी देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर जोर देता है, वहीं जब बात खुद पश्चिमी देशों में इस्लामी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात आती है तो पश्चिमी देश एक अलग भाषा बोलने लगते हैं। यहाँ तक कि पश्चिमी देश इस्लाम के महान पैगंबर के अपमान का समर्थन तक करने लगते हैं।
एक और मुद्दा यह है कि पश्चिम और विशेष रूप से अमेरिका के हितों और मूल्यों के बीच टकराव होता है तो वे सिद्धांतों की हितों पर बलि चढ़ा देते हैं और अपने हितों के लिए मानवाधिकारों का त्याग कर देते हैं। वास्तव में वे दूसरे देशों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं। ये दोहरा रवैया सऊदी अरब और कुछ अरब देशों समेत ज़ायनी शासन के प्रति स्पष्ट है। उदाहरण स्वरूप सऊदी अरब ने पिछले 7 वर्षों के दौरान यमन में मानव इतिहास के सबसे भयंकर संकट और मानवीय त्रासदी को जन्म दिया है, लेकिन उसके इन अपराधों को रोकने के लिए न सिर्फ कोई व्यवहारिक कार्रवाई की गई है बल्कि उसे लगातार हथियार बेचे जा रहे हैं। दूसरी ओर अवैध अधिकृत फिलिस्तीनी इलाकों में इसराइल के अत्याचारों और मानवाधिकारों के उल्लंघन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस अवैध शासन के खिलाफ लगभग सभी प्रस्तावों का विरोध किया है। 2018 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ायनी शासन के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निकलने की घोषणा कर दी।
मध्य पूर्व एक ऐसा क्षेत्र है जहां अमेरिका ने खुलकर मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई हैं और युद्ध अपराध किए हैं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण इराक है। अमेरिका ने सामूहिक विनाश के हथियारों के बहाने 2003 में इराक पर सैन्य चढ़ाई कर दी, जबकि वो आज तक अपने इस दावे को सिद्ध नहीं कर सका है। अमेरिका के हमले से इराक को अभूतपूर्व नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध में बड़ी संख्या में लोग मारे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2007 तक इराक युद्ध में 12 लाख इराकी मारे जा चुके थे। मरने वालों में 40% बच्चे और महिलाएं थीं। इसके अलावा युद्ध के शुरुआती 3 वर्षों में 50% इराकी डॉक्टर देश छोड़कर जा चुके थे। 2007 तक इराक में कुपोषण का शिकार बच्चों की संख्या 28% हो गई थी। 60% इराकी बच्चे मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के मुताबिक प्रतिवर्ष 40,000 इराकी महिलाओं को अपहरण करके अमरीकी ठेकेदार उन्हें अज्ञात जगहों पर पहुंचा दिया करते थे। इन अपराधों के लिए अमरीकी सरकार की कोई जवाबदेही तय नहीं की गई, बल्कि अमरीका आज तक आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के बहाने इराक में मौजूद है।
अमरीका के ये अपराध सिर्फ इराक तक ही सीमित नहीं रहे। सीरिया, फिलिस्तीन और यमन में भी उसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसी तरह के जघन्य अपराधों को अंजाम दिया है। वॉशिंगटन 2011 से आज तक सीरिया में आतंकवादी गुटों का समर्थन कर रहा है। सीरिया में आतंकवाद के समर्थन के नतीजे में लाखों लोगों की जानें गईं और 1,30,00,000 लोग बेघर हो गए। इस अरब देश का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तहस नहस हो गया। सीरिया में आज भी अमरीकी सैनिक मौजूद हैं जो सीरिया का तेल लूट रहे हैं और आतंकवादियों को शरण दे रहे हैं।
अमेरिका फिलिस्तीन में भी बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। वाशिंगटन तेल अवीव का सबसे महत्वपूर्ण समर्थक है। वास्तव में ज़ायोनी शासन मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और वाशिंगटन उसका समर्थन करता है। अमरीकी समर्थन ज़ायोनी शासन के अपराधों का मुख्य कारण है। लेबनान स्थित अल खनादिक न्यूज एजेंसी के संपादक मोहम्मद शम्स का कहना है कि फिलिस्तीनियों, विशेषकर बच्चों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की जब भी बात होगी तो उसमें अमेरिका की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका उन्नत हथियार ज़ायोनी शासन को देता है और संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में उसके अपराधों का बचाव करता है।
यमन में भी अमेरिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। 2015 में सऊदी अरब और उसके सहयोगी अरब देशों ने अमेरिका के समर्थन से यमन पर हमला कर दिया और चारों ओर से उसकी घेराबंदी कर दी, जिसके बाद इस गरीब देश में ऐसा संकट उत्पन्न हुआ कि जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यमन संकट को मानव इतिहास का सबसे भयंकर संकट करार दिया है। इसके बावजूद वॉशिंगटन यमन पर युद्ध थोपने वाले देशों का समर्थन जारी रखे हुए है। सऊदी अरब ज़ायोनी शासन की तरह मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ा रहा है और अमेरिका समेत पश्चिमी देश लगातार उसे अरबों डॉलर के हथियार बेच रहे हैं।
इस संदर्भ में ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं, यमन, सीरिया, इराक और बहरीन में अगर मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है तो अमेरिका इस अपराध में शामिल है। अमेरिकियों के समर्थन से ही ये बेशर्म और अहंकारी लोग इस तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और इस्लामी उम्मत की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं।
निसंदेह ईरान एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा लंबे समय से अमरीकी अपराधों और अत्याचारों को झेल रहा है। ईरानी राष्ट्र ने इस्लामिक क्रांति के बाद स्वतंत्रता और स्वाधीनता हासिल करना चाही तो अमरीका ने उस पर हमले शुरू कर दिए। अगर ईरान के खिलाफ अमरीका के अपराधों की सूची पर नज़र डालेंगे तो पता चलेगा कि दूसरे देशों पर वर्चस्व जमाने के लिए मानवाधिकार सिर्फ एक हथकंडा है। ईरानी संपत्ति जब्त करना, 8 वर्षीय थोपे गए युद्ध में सद्दाम शासन का समर्थन करना, तवस पर आक्रमण, अलगावादियों और क्रांति के विरोधियों का समर्थन करना, पिछले 4 दशकों के दौरान अमेरिका के ऐसे अपराध हैं जो आज भी जारी हैं। इसके अलावा ईरानी यात्री विमान को मार गिराना, ईरान में ज़ौनी शासन के आतंकवादी कार्रवाइयों का समर्थन करना, ईरान की इस्लामिक क्रांति को उखाड़ फेंकने के लिए बजट आवंटित करना और क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले IRGC के पूर्व कमांडर जनरल सुलेमानी की हत्या करना ईरानी राष्ट्र के खिलाफ अमरीकी अपराधों की सूची में शामिल हैं।
पिछले 4 दशकों के दौरान ईरान के खिलाफ अमेरिका ने इतने अपराध अंजाम दिए हैं कि जिनका हिसाब लगाना आसान नहीं है। इस संदर्भ में वरिष्ठ नेता का कहना है, अमेरिका ने शुरुआत से ही इस क्रांति का कड़ा और घोर विरोध किया। हालांकि उनके अपने गणित के हिसाब से वे सही भी थे, क्योंकि क्रांति से पहले ईरान अमेरिका की मुट्ठी में था, उसके स्रोतों पर अमेरिका का वर्चस्व था। ईरान के राजनीतिक मामलों में अमेरिका फैसले लेता था, अधिकारियों की तैनाती और उन्हें पद से हटाने में अमेरिका की चलती थी। क्रांति के बाद ये सब कुछ उनके हाथ से छिन गया, इसीलिए उन्होंने इसके विरोध का मार्ग चुना। शुरुआत से ही उन्होंने इस्लामी गणतंत्र के साथ दुर्व्यवहार किया और ये बात सभी जानते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, हमें इजाज़त दीजिए।